starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार, आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और मैं हूँ शशि कुमार। भारत सरकार ने हाल ही में केंद्रीय बजट 2026 पेश किया है, जिसमें NRI यानी प्रवासी भारतीयों के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी मार्केट हो या शेयर बाजार, या फिर टैक्स से जुड़े नियम हो, या विदेश से भारत में निवेश को लेकर किए गए बदलाव हो। आज इन्हीं मुद्दों को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुनाश यूनिवर्सिटी से एक जाने माने अर्थशास्त्री। हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद मिश्रा, जो मुनाश यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर मिश्रा का शोध कार्य विकास अर्थशास्त्र, वित्तीय बाजार, असमानता, ऊर्जा और भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है और उनकी राय नीतिगत स्तर पर काफी अहम मानी जाती है। डॉक्टर मिश्रा, SBS हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद
सर। सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि भारत के बजट 2026 को आप NRI के लिए कितनी बड़ी राहत या अवसर के रूप में देखते हैं?
तो इसमें पहली चीज तो ये है कि सरकार ने जो है, इन्होंने NRIs का भारत में पार्टिसिपेशन बढ़ाने का एक प्रयास किया है और उसके रास्ते में जो भी आपकी समझिए ब्यूरोक्रेटिक अड़चने या लाल फीताशाही या पेपर वर्क है, उसको थोड़ा सा सरकार ने कम करने की कोशिश की है, जिससे कि एक ईज ऑफ एक्सेस मिले और भारत व्यवस्था में NRIs की भागीदारी बढ़ सके। तो इसमें जो सबसे मेजर चीज ये है कि इक्विटी स्टेक बढ़ाने की बात कही है सरकार ने, कि आप ज्यादा हैविली इन्वेस्ट कर सकते हैं भारतीय कंपनियों में। दूसरा यह है कि जो टैक्स कट होता था आउटबाउंड रिमिटेंसेस पे, उसको टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कम किया है। और तीसरा जो है, सरकार ने सबसे बड़ा उठाया है कि जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन है उसको थोड़ा सा और सहज और स्मूथ बनाने की प्रयास किया है।
जी, जो NRI भारत में प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, इस बजट में उनके लिए सबसे बड़ा बदलाव क्या है और इसका व्यवहारिक फायदा कैसे मिलेगा?
इसमें सबसे पहला ये किया है कि जैसे अगर आप एक NRI से कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं इंडिया में, तो बायर को उसके लिए एक टैन के लिए अप्लाई करना पड़ता था और ज्यादातर लोगों के पास टैन नहीं होता था, तो सिर्फ इस ट्रांजैक्शन को प्रोसीड करने के लिए पहले उन्हें टैन के लिए अप्लाई करना पड़ता था, पेपर वर्क पड़ता था। तो उसमें डायरेक्ट बेनिफिट NRIs के लिए नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो अब अगर कोई NRI प्रॉपर्टी होल्ड करता है इंडिया में और उसे बेचना चाहता है, तो जो खरीदने वाला डोमेस्टिक रेजिडेंट है उसको कम पेपर वर्क से डील करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अब आप किसी NRI से प्रॉपर्टी खरीदना आसान हो जाता है आपके लिए, झंझट मुक्त हो जाता है, क्योंकि ये अब ये आपके पैन नंबर के थ्रू ही हो जाएगा टैक्स डिटेल्स।
इस बजट में NRI और विदेश में रहने वाले लोगों के लिए भारतीय शेयर बाजार में निवेश की सीमा बढ़ाई गई है, इससे भारतीय बाजार और प्रवासी निवेशकों दोनों पर क्या असर पड़ेगा?
तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इन्होंने कहा है कि भाई आप जो है NRI का जो पार्टिसिपेशन है शेयर मार्केट में, जहां तक मुझे याद है ये आपका 5% था, अभी इन्होंने 10% कर दिया है इंडिविजुअली, और ओवरऑल 24% तक हो सकता है। कहने का मतलब है कि NRIs अब ज्यादा बड़ी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं इंडियन कंपनीज में, सो उनका इन्वॉल्वमेंट निवेश ज्यादा हो सकता है इसमें, जैसे फॉरेन कैपिटल ज्यादा इंडिया में मूव करेगी, मेनली ड्रिवन बाय NRIs, जिनका लॉन्ग टर्म गोल भी इंडिया में इन्वेस्ट करना है। एक तो भारतीय स्टॉक मार्केट की नजर से अगर ओवरऑल देखा जाए, तो इसका मतलब है कि ज्यादा कैपिटल आएगा वहां पे और मार्केट ज्यादा लिक्विड होगा, ज्यादा डीप होगा। दूसरा, अगर इंडिविजुअल NRIs की तरफ से देखा जाए, मतलब जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो एक तरह से सरकार उनको इनवाइट कर रही है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का आप बड़ा हिस्सा बन सकते हैं, आप ज्यादा बड़ी भागीदारी कर सकते हैं। दूसरा यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रिक्शन जो भी इससे ज्यादा रिलेटेड था वो कम करने की कोशिश की, आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं।
सर, टैक्स और कंप्लायंस की बात करें तो एनआरआई के लिए इस बजट में सबसे बड़ा राहत देने वाला फैसला कौन सा है?
टैक्स के लिए कई सारी चीजें जो है इन्होंने कही है। पहले तो एक तो ये कहा है कि जो आउटबाउंड रेमिटेंसेस थे इसकी जो है जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स था, जो पहले 5% था आपका एजुकेशन हेल्थ और ट्रेवल पे, इसको 2% कर दिया है। तो इसका मतलब है कि आपका टैक्स जो आपका सोर्स पे कलेक्ट होता था वो कम होगा। अगर मान लीजिए अगर आपको टैक्स नहीं फाइल करना है इंडिया में तो आप मत करिए, क्योंकि ज्यादा आपका डिडक्ट नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग टैक्स इसीलिए फाइल करते थे क्योंकि टैक्स सोर्स पे डिडक्ट हो जाता था 5%, जो कि बड़ी रकम होती थी। तो एक तो ये चीज इन्होंने मतलब अगेन प्रोसेस को स्मूथ करने की कोशिश की है। टैक्स लाइबिलिटी आपकी उतनी ही है लेकिन सोर्स पे उतना नहीं कलेक्ट हो रहा है, तो आपको एक ऑप्शन है कि आप टैक्स सिस्टम से इंटरेक्ट करिए या ना करिए, आपके ऊपर आ गया है। दूसरा इन्होंने ये कहा है कि जो है आपका टैक्स फाइल करने की डेडलाइन भी बढ़ा दी है। मुझे याद नहीं है पहले क्या थी, लेकिन अभी शायद उन्होंने उसको कुछ ज्यादा मतलब ज्यादा समय तक के लिए दे दिया है। और ये भी कहा है कि आप टैक्स में चेंजेस कर सकते हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना रेक्टिफिकेशन वगैरह फाइल कर सकते हैं काफी समय तक। दूसरा जैसा मैंने कहा कि आपका अगर प्रॉपर्टी लेन देन कर रहे हैं तो उसमें जो आपका टैन की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी है, तो ये सब मतलब टैक्स में सहूलियतें हैं। दूसरा शायद इन्होंने ये भी किया है कि आपके जो फॉरेन एसेट्स हैं और फॉरेन इनकम है जो आपने पहले डिस्क्लोज नहीं की है, उसके लिए सरकार ने एक 6 महीने की विंडो दी है कि आप उसमें डिस्क्लोज कर सकते हैं और आपका कोई रिट्रोस्पेक्टिव पेनाल्टी या उसके लिए कोई अर्थदंड नहीं लगेगा।
विदेश से पढ़ाई, इलाज या यात्रा के लिए जो पैसे भेजे जाते हैं उन पर TCS नियमों में बदलाव का NRI पर क्या असर पड़ेगा?
हाँ, वो ये है कि TCS मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये पहले 5% था, अब इन्होंने सरकार ने उसको 2% कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि जैसे अगर एक सोचिए जो लोग हैं जो कि विदेश में पढ़ाई करने के लिए रेगुलर पैसे भेजते हैं, तो आपका ज्यादा 5% कट जाता था सोर्स पे, अभी 2% ही कटेगा। तो एक मोटा मोटी अगर कैलकुलेशन लीजिए तो आपका अगर मान लीजिए कि 40 लाख आप भेज रहे हैं तो 5% हुआ कुछ 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आके कट गए। अभी क्या हुआ है 2% कट रहे हैं तो मतलब 80,000 रुपए ही कट रहे हैं, तो आपके पास समझिए कैश फ्लो जो है 1.2 लाख बढ़ गया ऑटोमेटिकली। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं कम हुई है, आपकी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है उसकी अगेंस्ट ये एडजस्ट होगा, लेकिन यह है कि उस समय आपके उतने पैसे नहीं कट जाएंगे जितने पहले कट जाते थे।
लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से इस बजट के बाद NRI को अपनी निवेश रणनीति में क्या बदलाव करने चाहिए?
देखिए आप इसको ये मानिए कि एक्सेस इंप्रूव हुआ है, राइट?
जी,
इससे आपको प्लानिंग करने की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, लेकिन घुमा फिरा के आपको ये सोचना है कि आपका गोल क्या है और उसमें कहां फिट होता है ये सब। ये नहीं कि मतलब एक्सेस बढ़ गया इसका मतलब रिटर्न भी बढ़ गया।
जी जी,
पहली बार भारत में निवेश करने वाले युवा प्रवासियों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
एक तो मैं जनरल एडवाइस जो कहूंगा जो कि किसी भी यंग इन्वेस्टर के लिए एप्लीकेबल है, यंग NRI मतलब एक सबसेट है यंग इन्वेस्टर्स का। और पहली चीज ये है कि जैसे आप किसी भी चीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा आप शॉर्ट टर्म रिटर्न के बारे में ना सोचिए। शॉर्ट टर्म रिटर्न हमेशा स्पेकुलेटिव होते हैं और दे आर वेरी वेरी एक्सपोज टू द मार्केट रिस्क। तो आप ये पहले तो सोचिए कि आप कितने टाइम होराइजन के लिए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, और 5 साल 10 साल 20 साल जो भी आपका टाइम होराइजन है उसको दिमाग में रख के इन्वेस्ट कीजिए। दूसरी चीज ये कहूंगा कि अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं, आपको इन्वेस्टमेंट का अनुभव नहीं है, तो जितना हो सके डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कीजिए, इंडेक्स फंड या ETF में इन्वेस्ट कीजिए, रादर देन कि आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में जाकर के एक फर्म में इन्वेस्ट करिए, और बिकॉज यू आर एक्सपोज टू मोर रिस्क। दूसरा ये है कि ये अगर किसी और इन्वेस्टर नहीं, स्पेसिफिकली NRI के मद्देनजर अगर ये बात कही जाए, तो पहले आप ये सोचिए कि आपका फ्यूचर कहाँ है। आपका फ्यूचर अल्टीमेटली हिंदुस्तान में है या आपका फ्यूचर हिंदुस्तान के बाहर है? इसका मतलब ये है कि अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि आप मोस्टली बाहर रहेंगे, हिंदुस्तान के बाहर ही सेटल्ड होंगे, तो इंडिया में आप उतना ही इन्वेस्ट करिए जितना आपको पोर्टफोलियो बैलेंस करने के लिए जरूरी लगता है। ये नहीं कि दैट इज द डोमिनेंट इन्वेस्टमेंट। अगेन एनआरआई इन्वेस्टर्स में इन जनरल एक चीज जो देखी गई है जिसे कहते हैं हम लोग फेमिलियरिटी बायस। आपको अक्सर लगता है कि आप बहुत फेमिलियर हैं उस मार्केट से, तो आप जरूरत से ज्यादा एक्सपोज हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। और ये फेमिलियरिटी बायस कई बार कैन बी सोर्स ऑफ लॉस ऑफ इनकम और लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आप और भी रिस्क अकाउंट में लीजिए, जस्ट एक्सेस इंप्रूव होने का मतलब ये नहीं है कि रिटर्न्स भी इंप्रूव हो गए हैं। आप ये देखिए कि जैसे करेंसी रिस्क अभी भी है इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो आप देखिए कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट आपके पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का कितना पार्ट है। दूसरा है कि जो एनआरआईज हैं दे द बिगेस्ट एसेट क्लास दे होल्ड इन इंडिया ये है प्रॉपर्टी मार्केट। तो इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट में एनआरआईज बहुत हैवीली इन्वेस्टेड है। सरकार ने प्रॉपर्टी लेन देन के जो पेपर वर्क है उसको आसान किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो कैपिटल गेन्स टैक्स है और जो टैक्स लायबिलिटी है वो कहीं से कम हो गई है। तो उसको मद्देनजर में रख करके ही आप इन्वेस्ट करिए अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो।
और अंत में सर, अगर आपको SBS हिंदी के श्रोताओं खासकर NRI समुदाय के लिए इस बजट से जुड़ा एक मुख्य संदेश देना हो तो वो क्या होगा?
इस बजट में सरकार ने NRIs को आमंत्रित किया है उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, उन्हें इंडिया में एंगेज होने के लिए और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि सरकार स्टिल वांट्स यू टू बेसिकली हैव अ क्लीन वेल डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रांसपेरेंट पेपर वर्क। तो ये जरूरी है कि आप कंप्लायंट रहिए हर समय। और दूसरा जरूरी ये है कि किसी भी एंगल से आप जितना टैक्स ओव करते हैं वो कम नहीं हुआ है, टैक्स लाइबिलिटी आपकी उतनी ही है, पेपर वर्क कम हो गया है और एक्सेस ईज हो गया है। तो इसको ध्यान में रख करके आप अपने अगले कदम बढ़ाएं।
डॉक्टर विनोद मिश्रा, भारत के बजट 2026 और NRI से जुड़े पहलुओं को इतनी स्पष्ट और आसान भाषा में समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद शशि।
आपको बता दूं कि इस अंश में दी गई जानकारी सामान्य है और अपनी विशेष परिस्थिति के लिए किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें। साथ ही इस अंश में व्यक्त किए गए विचार निजी हैं। SBS ना तो इससे सहमत है और न ही असहमत। इसके साथ ही शशि कुमार को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए SBS हिंदी।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.